लिखने वाले लिख लेते थे, याद करने वाले याद कर लेते थे। हम ये देखते हैं जो तारीख़ की किताबें हमारे सामने हैं, कहा यह जाता है कि उस ज़माने में लोग हड्डियों पे लिखते थे, चमड़ों पे लिखते थे, पत्तों पे लिखते थे, दरख्तों की छाल पे लिखते थे। तो ये जो लिखने का अमल था, ये चले याद करना तो एक तरफ है, आदमी याद कर लेता है और याद करके उसने सुना दिया, लेकिन याद की हुई चीज़ को जब वेरीफाई किया जाएगा तो अब हड्डियाँ कितनी होंगी लोगों के पास, चमड़े पत्ते कितने होंगे। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि एक कोई मुरतब नुस्खा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर निगरानी तरतीब पाता, तैयार होता, और वो नुस्खा होता किसी के पास लकड़ी पे लिखा हुआ है तो वो भी जाके उसमें वेरीफाई कर लेता। तो दो सवाल आते हैं मेरे आपसे। पहला ये कि क्या उस ज़माने में कागज़ कलम मौजूद था, क्या ये बात ठीक है कि हड्डी चमड़े और छालों पर लिखा जाता था। और दूसरी बात कि रिसालत मआब वसल्लम की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी, लोग ये पूछते हैं कि कुरान मजीद देना थी, तो कुरान का जो नुस्खा है अव्वलीन, कोई आपका अपना ज़ाती नुस्खा होता जिसकी तरफ सब लोग रुजू करते और वहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं।
देखिए, ये महज अफसाना है जो आप बयान फरमा रहे हैं। कुरान मजीद खुद जगह जगह जिक्र करता है इस बात का कि वो फ़ी सुहफ़ मुकर्रमा है, बाकायदा तरीके से उसको लिखा गया है, लोग उसको उसी तरह तसनीफ़ के तौर पर लिख रहे हैं जिस तरह किताबें लिखी जाती हैं, एहतमाम के साथ उसकी किताबत होती है, उसके जो नुस्खे तैयार किए जाते हैं उनको सुहफ़ से ताबीर किया गया है। इसी तरीके से किरतास का जिक्र खुद कुरान मजीद में मौजूद है, फिरक मंशूर का जिक्र खुद कुरान में मौजूद है। कागज़ मौजूद था, जाहिर है कि वो आज की तरह का कागज़ नहीं था, उसमें चमड़े से भी और इसी तरह से और बहुत से अज्जा से कागज़ बनाया जाता था, तो कागज़ मौजूद था, उसी पर इसको लिखा जाता था और लोग लिखते थे। ये अलग बात है कि किसी के पास किसी मौके के ऊपर कोई कागज़ बाकायदा तौर पर नहीं है, इसलिए कि इस अफराद के साथ तो कागज़ मैसर नहीं होता था, तो उसने अपने तौर पर कोई आयत किसी हड्डी के ऊपर लिख ली या चमड़े के किसी टुकड़े के ऊपर लिख ली या किसी और चीज़ के ऊपर लिख ली। तो ये इनफरादी वाक़ियात है, बैसीत मजमुई बाकायदा मुसफ़ तैयार किए जा रहे थे, वो हर आदमी तैयार कर रहा था, उसके लिए कोई एक नुस्खा क्यों तरतीब दिया जाता, यानी कोई एक नुस्खा तरतीब दिया जाता तो ये बहुत बड़ा हादसा हो जाता। कहाँ तलाश करते उसको, कौन हिफाजत करता उसकी? लोग अगर कहीं वो पड़ा हुआ होता, हमले हो गए और बेशुमार मौके आए तो उसको आप जाये कर बैठते, ये तो वही हाल हो जाता कि जो पहले तौरात के साथ हुआ। यानी जिस वक्त हैकल पे हमला हुआ तो तौरात के सब नुस्खे ले जाए गए वहाँ से, तो ये तो हर शख्स के पास मौजूद था, यानी हर मुसलमान ने, किसी ने दो सूरतें, किसी ने 10 सूरतें, किसी ने 20 सूरतें, किसी ने पूरा कुरान, हर एक ने अपनी इस्तेदाद के मुताबिक अगर वो लिखना जानता तो लिखा, अगर लिखना नहीं जानता था तो दूसरे लोगों से लिखवाया उसको, और ये रिवायत कायम हुई। ये बिल्कुल गलत कहानी है जो लोगों को सुना दी गई है। कुरान मजीद बिल्कुल ही मुख्तलिफ तरीके से मुंतकिल हुआ है,
ठीक,
और अगर आप गौर करके देखें तो इस वक्त भी यही हो रहा है, लिखने वाले लिख रहे हैं, छापने वाले छाप रहे हैं, जो लोग याद कर सकते हैं याद कर रहे हैं। यानी इस वक्त जो सूरत हाल है, आप अंदाज़ा करें 14-15 सदियों के बाद जब मुसलमान इन्हिताब में मुबतला हो चुके हुए हैं, उस वक्त भी कुरान मजीद की मुंतकली का यही मामला है।
ठीक,
छापा खाना आया तो छपना शुरू हो गया, यानी उसके बाद क्या हुआ, जब छापा खाना आया तो क्या किसी एक नुस्खे का एहतमाम किया गया? जहाँ जहाँ मुमकिन था इसकी इशात होना शुरू हो गई, उस्मानियों ने भी की, सबसे पहले शाह फुआद ने की, शाह फारूक के ज़माने में छपना शुरू हो गया, और बहुत से दूसरे जो मुसलमानों के हुक्मरान थे उन्होंने अहतमाम करना शुरू कर दिया, जो आम लोग थे उन्होंने भी इशात में दिलचस्पी ली। इस वक्त भी अगर आप देखें तो दुनिया भर में कुरान मजीद इसी तरह से शायो ज़ाये है। लोग जिस ज़माने तक छापा खाना ईजाद नहीं हुआ था तो आप जानते हैं कि बादशाह तक उसको लिखते थे, यानी सादत समझते थे अपनी, जो बाकायदा कातिब थे वो भी अपने अपने नुस्खे तैयार करते थे। इसी तरह से आम लोग भी ये कोशिश करते थे कि वो अपने तौर पर अपने लिए कुरान मजीद का लिखकर एक नुस्खा तैयार कर लें। ऐसे लोग मौजूद थे, उनकी बाकायदा दास्तानें आपके पास किताबों में मौजूद हैं कि जिनकी ज़िंदगी का मकसद ही ये था कि वो कुरान मजीद आपको लिख के देते थे, आपको ज़रूरत है आपको लिख देंगे, किसी और ने कहा उसको लिख देंगे। तो इस तरीके से कुरान मजीद बिल्कुल फितरी ज़राए से शायो ज़ाय हुआ है, यानी जिन लोगों तक ये किताब आई, जिनको सबसे पहले इसने मुखातब किया, वो सहाबाए किराम है। और सहाबाए किराम के बारे में आप ये कैसे तसव्वुर करते हैं, अपने आप को उनकी जगह रख के देखें कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, पहली बार कुरान नाजिल हो रहा है, और वो इस कुरान से इतना ना बरते, उनमें याद करने वाले इसे याद ना करें, लिखने वाले इसे लिखने के लिए तैयार ना हो। हर आदमी की ये सबसे बड़ी ख्वाहिश होती थी कि अल्लाह की किताब को वो जितना याद कर सकता है याद करे और जितना लिख सकता है लिखे। तो इस तरह कुरान मजीद के लिए ये कोई एहतमाम करने की कभी ज़रूरत पेश नहीं आई कि कोई एक नुस्खा तैयार करवाया जाए। ये चीज़ तो बड़े फितने का बायस बन जाती।
ठीक,
قرآن مجید کے اس طریقے سے منتقل ہونے کا یہ نتیجہ ہوا کہ کسی تحریف، کسی تبدیلی، کسی تغیر کی گنجائش ہی نہیں رہی، ہر آدمی کے پاس موجود ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں مصائف کا آپ کو تاریخ میں ذکر کرتا ہے، وہ لوگوں نے اپنے طور پر تیار کر لیے تھے۔
ٹھیک۔